आप लोग बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, आप YouTube पे सूरज भाई जी के साथ सेशन लेते रहते हैं और ज्ञान सरोवर में जितनी भी भट्टियां होती हैं उसमें आप एक्टिवली इसको कोऑर्डिनेशन करते हैं। आप देखेंगे आपकी भट्टी में भी आपको योग अभ्यास कराएंगे, और जैसे दीदी बता रही थी कि आप रोटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, ज्ञान सरोवर जब से शुरू हुआ बनना तब से आप यहाँ पे हैं। और ऐसे ही अनिल भाई जी भी आप सबने देखा होगा, जिस दिन आप आए होंगे आप सबको रहने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था इतना शांतिपूर्वक सुचारू रूप से चलाते हैं, इतनी बड़ी सेवा, चाहे भट्टियाँ हों चाहे विंग हो, इवन जब विदेशी सीजन होती है तब भी आप काफ़ी एक्टिवली ये सेवा करते हैं। और हमने तो शुरू से देखा है भाई साहब को, बहुत ही ज्ञान योग धारणा, जैसे बाबा बोलते हैं हर चीज का एक परफेक्ट बैलेंस वो इनके जीवन से दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने दोनों भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कुछ समय पहले जब विंग्स की सेवा से पहले यहाँ पे विदेशी सीजन था, और विदेशी सीजन में जब विदेशी भाई बहनें आते हैं तो कई भाई बहनें ऐसे होते हैं जो बहुत पुराने होते हैं और आते रहते हैं, जिन्होंने दादियों को देखा है और अभी भी आते हैं। तो उसमें से एक यूके के माताजी थी, कुछ ग्रुप था, तो उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि जब दादी का टाइम था और अभी का टाइम, आप दादियों को मिस करते हो? अब मैं ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में जो कोई पुराने होंगे जिन्होंने दादियों की पालना ली है, क्या आप लोग दादियों को मिस करते हो? ऑब्वियसली ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको मतलब पूछना भी वाजिब नहीं होता है। तो मैंने उनको सिंपली ऐसे, बहुत सारे आंसर होते हैं, पर मैंने उनको एक लाइन में बोला कि जैसे कोई अपने बचपन को नहीं भूल पाता है ना, आप कितने भी बड़े हो जाएं, बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन भर साथ चलती हैं, राइट? बचपन में बचपन की कुछ यादें होती हैं, आपके जो प्रिय लोग होते हैं तो वो हमेशा आपके जीवन के साथ चलती हैं। तो हमारा भी सौभाग्य रहा है कि दादियों को देखा है ना? और उनसे पालना लिए, आज हमारे समक्ष में ऐसे भाई हैं। आप सब लोगों ने जो बाबा के घर में किताब मिलती है, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी, आपने सुना होगा और हम सब ने वो पढ़ा भी है, बहुत सारी चीजें। और पढ़ने का मकसद यही होता है कि उनके अनुभव, दादियां कैसे आई ज्ञान में, आई कैसे, स्टेबिलिटी उन्होंने मिली। तो ये सब जो कहानियां होती हैं, ये जो सारे अनुभव होते हैं, वो ऐसी चीजें होती हैं जैसे लाइट हाउस, और इनसे हमारे जीवन में एक रोशनी मिलती है, हमें पता चलता है कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन जो है अब रोहित भाई जी से ही करूंगा। रोहित भाई जी, जब ज्ञान सरोवर बना, राइट, मैंने देखा है सारे यहाँ पे जो भाई बहने सरेंडर हुए, खास करके ज्ञान सरोवर में, तो वो एक ऐसा दौर था कि कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई किसी की ग्रेजुएशन हुई होगी, किसी ने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ी, और सारे बहुत युवा थे। अगर मैं औसत आयु निकालूं तो उस समय 20 साल के सारे लोग होंगे, आज इसको बने हुए लगभग 27-28 साल हो गए तो सब मिड 40s और 50s में आ गए, लेकिन उस समय ऐसा था कि एकदम सब लोग यंग थे। और यंग अवस्था में आप पहले, आज बाबा ने भी बोला कि ज्ञान का निश्चय, ज्ञान का निश्चय होना, फिर निश्चय होने के बाद आप यज्ञ में आना और समर्पित होना, और समर्पित होने के बाद इतने लंबे समय तक ज्ञान योग की जो बाबा बोलते हैं प्रैक्टिस करना, धारणा करना, तो ये जो इतना लंबा सफर है इसमें डेफिनेटली बिना किसी की प्रेरणा के नहीं होता है, हमने कोई न कोई, हमारे आदर्श हमारे जीवन में होते हैं। तो ये जो समर्पण होना और इतना ये जो लंबा सफर है उसमें आप किसकी प्रेरणा मानते हैं, कैसे ये सफल शुरू हुआ?
ओम शांति। बहुत सुंदर प्रश्न शैलेंद्र भाई ने हम सबके सामने रखा। वास्तव में ज्ञान में आने के बाद शुरू शुरू में तो ज्ञान योग की मस्ती रहती है, लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है तो किसी न किसी से जरूर प्रेरणा मिलती है। मुझे अपना बचपन याद है, ज्ञान का बचपन। मैंने आज तक कभी कोर्स तो किया नहीं। जैसे एक गीता पाठशाला में आया, मुरली चल रही थी, मुरली से ही मेरा जन्म हुआ। आपने कभी किताब का जिक्र किया, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत कहानी। तो मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन में शुरू शुरू में इस किताब को पढ़ा। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मुझे इतनी प्रेरणा मिली बाबा की जीवन कहानी से। वो दोनों किताब मैंने शुरू में कई बार पढ़ा, और ये संयोग था कि लौकिक में मुझे अपना पिता का प्यार नहीं मिला था, क्योंकि बहुत छोटा ही था तभी पिताजी का देहांत हो गया था। तो जब मैं बाबा की किताब पढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे मुझे अपना पिता का परिचय मिल रहा है, अपने पिता का प्यार मिल रहा है, और मुझे अपना खोया हुआ वो पिता मिल गया, इस तरह की अनुभूति होती थी। और कई बार इतना प्रेम के वो आंसू बह जाते थे पढ़ते पढ़ते कि मुझे उस किताब को बंद करना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली सबसे पहले शुरू शुरू में बाबा की वो जीवन कहानी की किताब से। उसके बाद हम चूंकि इंदौर जोन से जुड़े हैं उस समय, तो इंदौर जोन के जो निदेशक थे ओम प्रकाश भाई जी, पुराने लोग नाम सुने होंगे, अभी अभी लगभग 8-9 साल पहले उसने अपना भौतिक देह का त्याग किया। तो जब ओम प्रकाश भाई जी से मिला तो मुझे इस बात की खुशी थी कि उस व्यक्ति से मिल रहा हूं जो साकार में बाबा ब्रह्मा से मिला है। और उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी कि वो एकदम अच्छे से, उनका चेहरा नयन चैन। तो शुरुआत में मुझे इंदौर में ओम प्रकाश भाई जी के जीवन को देखकर, उनके बारे में सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। और मुझे शुरू शुरू में जो समर्पित होने का संकल्प ज्ञान में आने के 6 महीने के अंदर आ गया था, मुझे अपना जीवन अब भगवान को देना है, तो ओम प्रकाश भाई जी के जीवन को देख करके प्रेरणा मिली। फिर मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रेरणा कई बार बदलता भी रहता है। फिर तो इंदौर में रहे हमें 5 साल करीब, ज्ञान सरोवर में आना हो गया। उस समय हम सूर्य भाई जी के संपर्क में आए, तो सूर्य भाई जी को देखते थे, उनका योगी जीवन, उनका पालना, उनका ज्ञान सुनाने का तरीका, और हम सबको जो उमंग उत्साह कुमारों को कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे समर्पित जीवन का क्या महत्व है, तो वो सूर्य भाई जी से बहुत बहुत प्रेरणा मिलती है, अब तक भी मिलती है। आप सबको याद है ज्ञान सरोवर में शुरू में जब हम आए तो यहाँ पर दादी चंद्रमणि थी, 95 से 97 तक दादी चंद्रमणि ज्ञान सरोवर की निदेशिका थी। बाबा उनको शेरे पंजाब कहते थे। तो फिर दादी से बहुत सीखने को मिला, दादी चंद्रमणि जी से, क्योंकि मुझे याद है दादी मुरली को बहुत महत्व देती थी, अमृत वेला योग को बहुत महत्व देती थी। यहाँ जो राजऋषि हाल है उस समय दादी वहां जाकर के योग कराती थी समर्पित भाई बहनों को। दादी रहती थी दादी खटिज में और यहाँ से पैदल जाती थी, वहां दादी योग कराती थी, और योग कराने के बाद एकदम खड़े होकर के शिव शक्ति बनकर 15 मिनट 20 मिनट ऐसी एकाग्रता से योग कराती थी कि ऐसा लगता था जैसे एकदम साक्षात कोई देवी आ गई है और इनके नयन से एकदम शिव शक्तियां हमारे ऊपर आ रही है। तो वो अनुभूति जो योग में होती थी वो बहुत सुंदर, वो सबको शब्दों में प्रकट करना भी मुश्किल है। फिर तो हमारी यहाँ पर मनोहर दादी रही, मनोहर दादी के बारे में क्या कहें, बहुत कुछ सीखने को मिला दादी से, मुरली सुनाने का उनका तरीका, प्यार का तरीका, पालना का तरीका। दादी चंद्रमणि के समय भी हम सब जो आपस में, क्योंकि यूथ थे, युवा थे उन दिनों, जैसे शैलू भाई ने बताया कि छोटी उम्र में सब बाबा घर में आ गए थे, तो आपस में कुछ थोड़ा बहुत खिटपिट भी हो जाता था, घर की बात है। तो जैसे मान लो दो भाई आपस में गए दादी के पास कोई बात को लेकर के, तो जाते समय दादी से मिलने जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे अभी जाकर के सब कंप्लेन करूंगा, ये भी कंप्लेन करेगा, मैं भी कंप्लेन करूंगा। लेकिन दादी का इतना सुंदर तरीका था कि दादी दोनों को बिठाते थे और इतना प्यार देते थे, इतनी विशेषताएं आपस में वर्णन कराते थे, और जब दादी से मिलने जाते थे तो स्थिति अलग होती थी, और दादी से मिलकर के बाहर निकलते थे तो दोनों को गले लगवाकर, दोनों को प्यार करके, हाथ मिलवा करके बाहर निकलते थे। तो लोग बोलते थे अरे तुम लोग तो आपस में कुछ खटपट करके गए थे, आपस में ऐसे निकलो जैसे आपस दोस्त बन गए। तो ये तरीका था दादियों का कि कुछ छोटी मोटी बातें आएगी जीवन में, वो सब खत्म हो जाएगा। तो लंबी कहानी है, लेकिन मैं सार में ही कहना चाहता हूँ कि दादियों से और अपने वरिष्ठों से बहुत प्रेरणा मिलती रही है और अब तक मिल रही है। ओम शांति।
जैसे रोहित भैया बता रहे थे कि लाइक सच में हम भी बहुत छोटे आए थे, बहुत छोटे, 16-17 साल की उम्र में, और मैं सच बताऊं उस समय पे ज्ञान भी नहीं होता है। इतनी छोटी उम्र होती है, आप ज्ञान तो धीरे धीरे समझ में आता है, धारणाएं धीरे धीरे बनती हैं। तो उस समय पे मधुबन में जो मैंने मधुबन निवासियों को देखा, जो दादियों को देखा, तो आज जब मैं उस चीज को सोचता हूँ ना, तो मेरे मन में से एक ही आवाज आती है कि मैं दुनिया के ऐसे ऐसे सुंदर लोगों से मिला। आप सब जानते होंगे अशोक भाई गावा जी, क्योंकि मैं सिक्योरिटी विंग से जुड़ा हुआ हूँ। एक बार ऐसे ही बात हो रही थी, तो दादी के बारे में बात चल रही थी, वो बहुत सारी कहानियों को सुनाते थे, ज्ञान सरोवर कैसे खरीदा, जो गवर्नर थे उनको दादी ने कैसे बाबा का बच्चा बनाया। तो जनरली अशोक भाई वो फौज से हैं, एयरफोर्स से हैं, और आपको पता हो एयरफोर्स वाले ज्यादा इमोशनल नहीं होते हैं, तो वैसे भी अशोक भाई ज्यादा इमोशनल नहीं है। लेकिन उस समय पे मैंने भाई साहब की जो उन्होंने एक शब्द बोला संस्कृत का अचानक ही, न भूतो न भविष्यते, तो उनका कहने का मतलब था कि यज्ञ में कोई कोई ऐसी आत्मा है जो पार्टिकुलर टाइम पे ही आती है, आप उनसे उस समय ही मिल सकते हैं, उसके बाद भी नहीं मिल सकते हैं। तो यज्ञ में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, मतलब हम खुद को बहुत लकी समझते हैं कि ऐसे लोगों की पालना मिली है। तो उसमें से एक थे बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, उनकी कहानियां और उनकी आप बोलो पर्सनालिटी, वो तो जो एक बार उनसे मिल लिया वो भूल नहीं सकता है। सारा यज्ञ जैसे बाबा को मेरा बाबा बोलते हैं, दादी को मेरी दादी बोलते हैं, और सच में वो ममता की मूरत थी, सच में ममता की मूरत। तो मैं अनिल भाई से जरूर पूछूंगा बड़ी दादी के बारे में, प्लीज आप जो आपके अनुभव हैं पर्सनली, हम सब के इतने अनुभव हैं पर्सनल, वैसे तो कहानियों में देखा है, आजकल मूवी में भी देखते हैं, लेकिन आपके जो पर्सनल जो टच किया हो प्लीज आप वो हमारे साथ शेयर करें।
ओम शांति। दादी जी को जब हम याद करते हैं तो ऐसा अभी भी हम अनुभव करते हैं कि दादी यहाँ है, क्योंकि हम जो भी स्थान यहाँ देखते हैं सबको दादी ने कैसे डेवलप किया, कैसे दादी ने ध्यान रखा, तो दादी के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी स्थान की। तो दादी का सबसे पहले देखा, दादी का हर एक के लिए दादी को कितना रिस्पेक्ट होता था, छोटे बच्चे हों, कोई महात्मा हो, भक्ति मार्ग कभी क्यों ना हो, या अपने भाई बहने हो, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात थी, दादी जब भी गाड़ी से चलती थी ना गाड़ी में, तो दादी हमेशा गाड़ी से बाहर हाथ करके सबको ऐसे हाथ हिलाती रहेगी, जो भी रास्ते में आ जा रहा है कोई भी, दादी जानती है नहीं जानती कोई भी, पहले तो ऐसे अभिवादन करेगी दादी सबको। और बाय द वे किसी ने देखा नहीं तो दादी फिर पीछे मुड़ के भी, तो दादी का एक बहुत बड़ा लहजा था। और कोई भी भट्टियों में आते थे, बाबा से मिलने आते थे, विंग्स के प्रोग्राम होते थे, तो लोग घंटों क्लास कराते थे और दादी केवल 5-7 मिनट में ऐसा अपना व्यवहार प्रस्तुत करती थी कि सभी लोग यही कहते थे कि हम ये सब भूल गया कि क्या क्लास हमने सुना है दादी के आगे। क्योंकि दादी जब क्लास में आती थी, पहले तो अभिवादन करेगी और पहला क्या पूछेगी, सबको भोजन ठीक मिला, सबको रहने के लिए अच्छा मिला, दादी के ये पहले प्रश्न होते थे सबसे। और दादी इतना प्रैक्टिकल, इतना रमणीक माहौल बना देती थी। प्रैक्टिकल देखा यहाँ, यहाँ एक बार दादी बैठी थी स्टेज पर ही, और कुछ लोग ना रिस्पेक्ट में, जैसे कोई हनुमान बना था, कोई श्री कृष्ण बना था, कोई वेलकम के लिए दादी को, तो एक भाई यहाँ बैठे थे साइड में, हनुमान बनकर बैठे थे, तो हनुमान कृष्ण वो उसको वीर आसन बोलते हैं ना, उसमें बैठना पड़ता है, तो उसमें बैठे थे, तो बार बार वो जो है अपना पांव चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे।
और वो हनुमान भी मोटे थे, हनुमान जी भी मोटे थे
तो वो किचन के रामू भाई थे बने हुए। तो दादी ने कहा, हनुमान जी ठीक से बैठ जाइए, मतलब आराम से पूरा। तो दादी देखो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जगह पर भी हमेशा हर एक का इतना ध्यान रखती थी। और एक ऐसे दिखाया, समर्पण समारोह था, उसी में दिखाया ड्रामा में, तो ड्रामा में दिखाया कि वो टीचर बहन, वो जो कुमारी है जिसको समर्पित करने ला रही, तो उसको यहीं पर ले आई हारमोनियल स्टेज पर ही, क्यों ले चल रहे हैं मधुमन, आपको समर्पित कराना है। और दादी यहाँ बैठ करके देख रही थी, तो जब मधुबन में लाई ना, तो कहा आपको दादी से मिलाएंगे मधुबन में, तो दादी यहाँ बैठी थी, दादी कहीं यहाँ नहीं, दादी यहीं आएगी। और जो ड्रामा, सोचे ड्रामा चल रहा केवल, और दादी आई और उस कुमारी को पूरा बाहों में ले लिया दादी ने। और जो उनके माँ बाप बने थे, वो भी कोई ऐसे लौकिक माँ बाप भी नहीं थे, बने हुए थे उसमें, तो दादी ने कहा कि दादी आपकी बच्ची का ध्यान रखेगी। तो दादी ड्रामा में भी इतना एक्चुअल, एकदम रियल ला देती थी ना, रियल जैसे प्रस्तुति, कि लगता ही नहीं था कि ये कोई ड्रामा चल रहा है। और दादी जैसे अथॉरिटी, कहाँ दादी को अथॉरिटी दिखाना है और कहाँ नॉर्मल रहना, इतना बैलेंस था दादी का हर एक के लिए। दादी को कुछ पंपलेट भी छपवाना है ना, मान लीजिए 10 लाख पंपलेट छपवाना है, सबको बुलाएगी, पांडव वन ज्ञान सरोवर सभी आओ, और टावर ऑफिस पर बैठती थी दादी। और पंपलेट भी छपवाना है तो दादी कहती थी कि दादी का विचार है कि इतना पंपलेट छपवाए, आप लोगों का क्या विचार है, हाथ उठाओ। तो दादी सबसे वो गुड विशेज ले लेती थी, सबसे हाथ उठवाएगी, सबका समर्थन, फिर दादी उस पर अपना एक्शन लेती थी। तो हम लोगों ने देखा कि दादी ये नहीं कि ये छोटे हैं ये हैं, हर एक का राय लेती थी दादी। और दादी को कहाँ अथॉरिटी बनना होता था वो भी आता था। उस समय रमेश शाह जी भी होते थे अकाउंट में, तो उस समय बहनें तो जानती हूँ बहुत स्ट्रिक्ट थे बहनें भी एकदम ना, जब तक वो बैठते थे कोई कुछ बोल नहीं सकता था, 4 दिन 5 दिन पूरा एकदम बहुत सीरियसली रहते थे, कहीं आप जा नहीं सकते थे जब तक आपका हुआ नहीं अकाउंट का। तो हमको याद है वहीं शांति स्तंभ पर ही दादी बैठी हुई थी, तो ज्ञान सरोवर पांडव भवन के भी भाई थे और वहीं पर टीचर बहने भी बैठी थी उस दिन अकाउंट वाली। तो दादी ने कहा कि दादी का विचार है कि कि आज शाम को पीस पार्क में पिकनिक करें। तो सब भाइयों ने तो ताली बजाया, ज्ञान सरोवर पांडवन के जो भी भाई थे, टीचर बहने चुपचाप बैठी रही, क्योंकि टीचर बहनों को तो छुट्टी नहीं मिलेगी ना, वो चुपचाप बैठी थी। दादी ने कहा, क्यों टीचर बहनों को खुशी नहीं है? तो किसी ने बताया, नहीं दादी, इनको तो रमेश शाह जी छुट्टी नहीं देंगे ना। तो दादी ने उस समय बहुत ही अथॉरिटी से, कौन है इनका आका, देख लेगी दादी उनको, सभी चलेंगे पीस पार्क। तो इतना बहनों ने ताली बजाया। तो दादी का हम देखते थे कि कहाँ अथॉरिटी दिखाना है, कहाँ नॉर्मल डरना है, कहाँ हर एक से राय लेनी। तो जबरदस्त था दादी का जवाब।
दादी के बारे में तो ऐसा था कि अगर दादी ऑर्डर करे ना तो बाबा को भी संदेश देना पड़ता था, इतना उनके विषय में बोलते हैं कि बाबा भी की दादी ने बोला तो फिर तो ये चीज होनी है। और आज दुनिया में जो चीज सिखाते हैं ना कि लीडरशिप क्या होती है, आज हम देखते हैं कि हमारा ब्राह्मण परिवार बहुत बड़ा है और हम बहुत प्रोफेशनली हो गए हैं, अभी हमारे पास बहुत रिसोर्स हैं, लेकिन पहले तो ये केवल परिवार था, हर कोई दादी से इतना अप्रोचेबल था, इतना वन टू वन होता है। हम सबको मालूम है कि दादी का जब जन्मदिन होता था ना तो वो धनतेरस पे होता था, और दादी सुबेरे योग के बाद हर कोई दादी के कमरे में जाता था उनको ग्रीट करने के लिए, और दादी सुबेरे ही एकदम जैसे होता है ना मंदिर में मूर्ति बैठी होती है तो उस समय पे सबको ग्रीट करना। आप सबको पता हो कि दादी का एक सिग्नेचर स्टेप था दृष्टि देने का और स्माइल करने का, है ना, जिन्होंने देखा होगा। अब कभी वीडियो में भी देखेंगे तो जो दादी, एक चीज होती है कि व्यक्ति प्रिटेंड करता है, एक होता है कि नेचुरल होता है। तो वो बहुत ऐसी चीजें थी, दादी का वन टू वन कनेक्शन होता था। मैं थोड़ा सा अपना सुनाना चाहूंगा, क्योंकि मैं पांडव वन में था, दादी उस समय पांडव वन में रहते थे, और उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी 16-17 साल था और मैं टेलीफोन एक्सचेंज में था, और उस समय पे स्पोर्ट्स विंग बना ही था, तो शशि बहन और ये जो सारे उनके जो थे पदाधिकारी, उन्होंने बोला कि मधुवन में हम एक स्पोर्ट्स इवेंट करते हैं। तो सब जगह से जो हमारा शांतिवन है, हॉस्पिटल, पांडव ज्ञान सरोवर, सब जगह से सब भाई बहनों को इसमें इन्वॉल्व होना है और स्पोर्ट्स करेंगे। तो उस समय पे वो स्पोर्ट्स इवेंट हुई, बहनों के लिए था मम्मा कप और भाइयों के लिए था बाबा कप, ऐसे करके जो जहां से जो कैंपस जीतेगा। तो उस समय पे एक उसमें इवेंट थी नक्की के पास मैराथन, अराउंड 5 किलोमीटर की मैराथन थी, तो उसमें मैं भी दौड़ा और उसमें स्पोर्ट्स विंग के जो कोऑर्डिनेटर हैं जगवीर भाई वो भी थे और एक भाई और था वो भी ज्ञान सरोवर का। तो वो ऐसी इवेंट थी जिसमें सारे ज्ञान सरोवर वाले जीते थे उस इवेंट में। और तो फिर सारा इतना इवेंट होने के बाद जो फोटोग्राफ होना था ओम शांति भवन के जो नीचे सीढ़ियां हैं वहां पे सोफा लगाया गया, सारी दादियां बैठी वहां पे, हमारी मनोहर दादी थी, यशु दादी, सारी जो दादियां, बड़ी दादी, मोहिनी बहन, सब कुछ थे। तो जो दौड़ के आए जो विनर थे उनके साथ सबको ग्रुप फोटो लेना था सारे। तो मैं उसमें थर्ड इवेंट था और मैं सच में बहुत थक गया था आने के बाद, मैं जैसे ऐसे ही लेट गया था, लेकिन लोग दूसरे भाई उठा के लेके गए और उन्होंने दादी के सामने जो सोफा था उसके नीचे हम लोग बैठे ग्रुप में फोटो के लिए। आप बिलीव करेंगे उस समय मेरे बाल, मतलब पूरी बॉडी सबकी पसीने से तरबदर थी एकदम, और दादी ने देखा, क्योंकि दादी जानती थी कि मैं टेलीफोन एक्सचेंज में सेवा करता हूँ, बड़ी मुस्कुराई एकदम ऐसे, और मैं उनके सामने ही था उनके पैरों में, उन्होंने अपना हाथ मेरे बालों में, जैसे माँ करती है ना आपके बालों को जैसे हिलाते हैं, और उन्होंने इतना, मतलब वो एक जैसे होता है ना भावुक पल, दादी हमें प्यार कर रही है ऐसा, और उन्होंने ऐसे करके, अच्छा तुम भी जीता, यू नो। तो ये चीज जो हमेशा लीडर्स में बताते हैं कि टॉप टू बॉटम आपका 1-to-1 होता है, तो दादियों का ये नेचुरली दिखता था सारे मधुवन वालों के साथ। अगर एक बार दादी बोल दे कि ये चीज करनी है, तो किसी की मजाल की कोई उस चीज के लिए कुछ बोले भी ऐसा। तो इस तरह की वंडरफुल पर्सनालिटी बड़ी दादी थी, और उन्होंने इसको ऐसे परिवार के साथ चलाया। रोहित भाई जी दादी चंद्रमणि की बात बता रहे थे कि दादी ऐसा, तो कभी ऐसा यहाँ पे जब होता भी था ना, तो दादी चंद्रमणि बोलती थी कि आप सब होली हंस हो, हंस हो, और मैं बड़ी दादी को क्या जवाब दूंगी इन्हों अगर ऐसा कुछ होता है। तो आप सोच सकते कि यज्ञ में उस समय कितना आज भी है ऑब्वियसली हम सब जो परिवार समझते हैं, तो उस समय दादियों का भी इतना म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में रोहित भाई जी से दादी चंद्रमणि जी के विषय में पूछूंगा, उनकी विशेष विशेषताएं।
ओम शांति। अनिल भाई और सैलू भाई ने बड़ी दादी जी के बारे में और उनके साथ का अनुभव, उनकी विशेषताएं आप सबको बहुत सुंदर तरीके से सुनाए। सैलू भाई आपकी आज्ञा हो तो बड़ी दादी के बारे में थोड़ा मैं भी सुना दूं। बड़ी दादी जी को अर्थात दादी प्रकाशमणि जी को जब भी हम देखते थे ऐसा लगता था जैसे बाबा और मम्मा का दोनों स्वरूप इनके अंदर है। और भल हम में से जैसे अनेक लोग साकार में बाबा मम्मा को नहीं देख पाए, लेकिन जब भी हम दादी को देखते थे, दादी से मिलते थे, दादी जी की पालना की अनुभूति करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे हम बाबा और मम्मा दोनों को देख लिए। बड़ी दादी के बारे में जैसे अनिल भाई सुना रहे थे कि बहुत प्यार, बहुत पालना। दादी की तीन विशेषताएं, वैसे खान थी विशेषताओं की, लेकिन तीन विशेषताएं बहुत ज्यादा थी। तीन चीज से बहुत प्यार था, पढ़ाई से, परिवार से और पिकनिक से। पिकनिक के बारे में बताया अनिल भाई ने, दादी को जब भी ऐसा होता था कि चलो पीस पार्क चलो कहीं पिकनिक करने। पढ़ाई से बहुत प्यार था, दादी रोज जब तक स्वस्थ रही मुरली सुनाती थी, और मुरली में ही पूरा संसार समाचार, सेंट्रो में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, सब जैसे एक लूरी जैसे दादी सुनाती थी, और वो सुनने का सुख बहुत बहुत मिलता था। इसी तरह से परिवार से बहुत प्यार था, छोटे बड़े जो भी आते थे दादी सबको, जैसे अभी अनिल भाई जी सुना रहे थे कि दो चीजें ज्यादा पूछते थे दादी, सबको अच्छे से कमरा मिला, सबको ठीक से खाना मिल रहा है, किसी को कुछ चाहिए तो बताओ। दादी सभा में पूछती थी, चाहे वो बीके होते थे चाहे नान बीके होते थे। एक घटना मुझे याद आ गई अभी सुनते सुनते, इसी हाल की बात है। यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस चल रहा था साधु संत महात्माओं का धार्मिक सम्मेलन, और पूरे भारतवर्ष से अनेक महात्मा लोग आए थे। तो दो तीन दिन के बाद दादी आई थी, और दादी इसी सभा में बैठ करके सबसे पूछा कि सब महात्मा लोगों से सबसे पहले दादी बहुत झुक के प्रणाम करती थी, फिर दादी कहती थी दादी बैठी है किसी को कुछ चाहिए तो बताओ। तो एक महात्मा जी खड़े हो गए इसी लेफ्ट साइड से, और दादी को कहा कि दादी अब वो सीन इमर्ज करो आप। दादी को कहा दादी आप हाँ कहेंगे तब मैं बताऊंगा। अब दादी कहे नहीं बाबा के घर में जो भी मिल सकता है जरूर मिलेगा, लेकिन आप बोलो महात्मा जी क्या चाहिए आपको। महात्मा जी बोले नहीं दादी पहले प्रॉमिस करो कि आप जब बोलोगे तभी आप हाँ करोगी तभी मैं बताऊंगा। इस तरह से आपस में दादी और वो महात्मा जी के बीच में चिट चैट हो रहे थे। शाम का सत्र था, बहुत सारी माताएं हमारी सेवाधारी माताएं सब पीछे बैठी थी। अब माताएं तो पीछे से कहने लगी कि पता नहीं महात्मा जी क्या मांगेगा, दादी जैसे बता भी नहीं रहा है, ये बोल भी नहीं रहा है, और दादी को प्रॉमिस भी करवा रहा है। खैर दोनों बीच में बहुत देर तक ऐसी चिटचैट होती रही। लास्ट में महात्मा जी कहता है दादी मैं 3 दिन से यहां पर हूं, आप किसी को ऑर्डर नहीं करते, बिल्डिंग वाला बिल्डिंग संभाल रहा है, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा है, भोजन बनाने वाले भोजन बना रहे हैं, माइक रखने वाला माइक रख रहा है, लाइट जाना है लाइट जला रहा है। इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी सुंदर ट्रेनिंग आपने कैसे दिया है, आप कितना सुंदर इस सबको ऑर्डर देके चलाते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए दादी, मेरे आश्रम में 50 चेले हैं और इतने लड़ते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक ब्रह्मा कुमार दे दो, वो जाके 50 चेले को ठीक कर देगा। तो यहाँ की व्यवस्था से बहुत प्रेरणा मिलता है उन सबको। तो दादी ने कहा कि आपको सब कुछ मिल सकता है लेकिन ब्रह्मा कुमार नहीं मिल सकता, क्योंकि इन लोगों ने मुझे नहीं दिया है जीवन, इन लोगों ने भगवान को जीवन दिया है और भगवान को देख करके लोग सेवा करते हैं। इसी तरह से दादी की एक और बात मुझे याद आ गई, जब भी कोई नया चीज होता था, जैसे बारिश हुई तो पहली बारिश होते ही दादी कहती थी सबको हलवा खिलाओ, सबको गुलाब जामुन खिलाओ, सबको पकौड़ा खिलाओ। और अनिल भाई को याद होगा जब पहली बारिश होती थी तो दादी पांडव भवन से बारिश देखने के लिए ज्ञानसरोवर आ जाती थी, खास पानी से बहुत प्यार था। पहली बारिश से कहीं भी रहे दादी, दिल्ली में रहे, लंदन में रहे, पूना रहे, कहीं भी रहे, पहली बारिश होते ही दादी कहती थी पहली बारिश हो गई, अभी मधुबन में पिकनिक कराओ। तो दादी को बहुत प्रकृति से प्यार था। लास्ट में जब दादी बहुत बीमार पड़ गई थी 2006-07 में, तो एक बार इतनी बारिश हुई कि दादी काटे से बाहर निकल नहीं पाती थी। इतनी बारिश हुई कि पानी दादी काटे तक पहुंच गया। तो लोगों ने कहा कि अब तक दादी पानी को देखने आते थे, अभी पानी दादी को देखने गया है। तो ऐसे में कहानियां है अगर सुनाने लगे तो, दादी चंद्रमणि के साथ का भी अनुभव बहुत बहुत हमारा शुरू से रहा है। मैं जब इंदौर में था तो इंदौर जोन की संचालिका दादी भी थी, दादी चंद्रमणि। और दादी चंद्रमणि जब वहां इंदौर जाती थी तो हम लोग तो हाइट में छोटे दुबले पतले, और दादी पंजाब से आती थी तो दादी कहती थी हमारे पंजाब के भाई लोग तो हट्टे कट्टे होते हैं, ओम प्रकाश भाई इन लोगों को खिलाए पिलाए करो, हट्टे कट्टे हो जाए। अब जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, एमपी के लोग हैं, तो दुबले पतले होते हैं, थोड़े से कहां से हट्टे कट्टे हो जाएंगे। लेकिन दादी को लगता था नहीं, इनको खिलाओ पिलाओ, गाजर का दूध पिलाओ, गाजर का वो रस पिलाओ। हाँ, ऐसे खूब दादी को उमंग उत्साह होता था। तो दादी जब हम यहाँ ज्ञानसरोवर में आ गए तो जब मुझे संकल्प आया कि दादी मुझे ज्ञानसरोवर में रहना है, तो एक्चुअली ज्ञानसरोवर में रखने के निमित्त हमारी दादी चंद्रमणि थी। तो दादी ने ही ओम प्रकाश भाई जी को कहा कि इनको यही रहन दो करके। शुरू में यहाँ पर आप सबको मालूम होना चाहिए कि शुरुआती में जो भाई लोग आए तो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग एरिया से आए, कईयों को रखे नहीं रखे ऐसा होता था। एक भाई आया, अभी भी है ज्ञान सरोवर में, वो अपनी दीदी का लेटर लेकर के आए। अभी बेचारा वो आया तो बहुत सिंपल, अभी भी है यहाँ पर। अब वो जो दीदी थी, वो दीदी ने कहा नहीं तुम नहीं रह सकते यहाँ पर, तुम्हें तो अभी वापस जाना पड़ेगा, अभी थोड़ा और पढ़ाई लिखाई करो, अभी और अपना नौकरी धंधा करो, थोड़ा और कारोबार करो, जो भी करना है, और ज्ञान योग की पराकाष्ठा करके आओ। और वो बेचारा बहुत निराश हो गया, वो गया दादी के पास, दादी चंद्रमणि के पास। दादी को कहा दादी मुझे तो समर्पित होना है लेकिन एक दीदी तो मुझे कहती वापस जाओ। तो दादी ने तुरंत फोन किया वो दीदी को, और वो दीदी को बोला ऐसा है बहन, ये कुमार मेरा है, ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ऐसे दादी बहुत प्यार करती थी, बहुत पालना करती थी। साकार बाबा के समय की बात है, आप सबको कईयों को पता नहीं होगा, साकार बाबा के समय बहुत सारी सेंटर की बहनें जो स्वभाव संस्कार के कारण कई बार मधुबन आ जाते थे, बाबा के पास भेज देते थे, तो बाबा उन बहनों को जिनको सेंटर से नहीं रख पाए, सेंटर पे एडजस्ट नहीं कर पाए, उन बहनों को बाबा दादी के पास भेजते थे, दादी चंद्रमणि के पास। और दादी चंद्रमणि की पालना, दादी चंद्रमणि की इतनी सुंदर विशेषता थी कि दादी उनको देख करके, उस बहन को देख करके उनकी विशेषता करती थी। अरे तुम तो शिव शक्ति हो, तुम तो भगवान का नाम रोशन करोगी, तुम्हारे अंदर तो इतनी गुण है, इतने तुम तो भगवान बहुत, तुमसे बाबा बहुत सेवा कराएगा। अब कहां वो अवगुण अवगुण लेकर के जाते थे और वो दादी के सामने सब भूल जाते थे। और आज वो बहने जिनको दादी ने प्यार दिया, पालना दिया, कई जोन की इंचार्ज है। ये दादी की पालना का, दादी के प्यार का प्रत्यक्ष स्वरूप था। और दादी बहुत आज्ञाकारी थी, बड़ी दादी को भगवान जैसे, भगवान का स्वरूप देखते थे। एक घटना मैं सुनाता हूं। एक बार दादी को कहीं जाना था, दादी चंद्रमणि को, और बड़े बड़े पोस्टर होल्डर सब बन गए थे, बड़े बड़े प्रोग्राम। अभी दादी की गाड़ी पांडव भवन के गेट पर तैयार है, क्यों आप आजकल हम छोटी बहनों को या सेवाधारी भाइयों को सीखना चाहिए सब चीजों से। अभी गाड़ी तैयार है, दादी ने अचानक बोला, बड़ी दादी ने, चंद्रमणि मेरा एक विचार है कि तुम प्रोग्राम कैंसिल कर दो तो अच्छा है। अब आप सोचो जरा, जिस शहर में जाना है उस शहर में होर्डिंग लग चुका है, उस शहर में पोस्टर लग चुका है, उस शहर में प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल बन चुका है, लेकिन बड़ी दादी ने कहा, दादी ने कहा सामान उतारो नहीं जाना है। तो दादी की आज्ञा को भगवान की आज्ञा, एक सेकंड भी दादी बड़ी दादी चंद्रमणि सोचती नहीं थी कि मुझे जाना चाहिए, या बड़ी दादी के को देख करके ये समझती थी कि ब्रह्मा बाबा ने, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के सीट पर बड़ी दादी को बिठाया है। तो बड़ी दीदी दादी की आज्ञा मना भगवान की आज्ञा। तो ऐसे दादी की बहुत विशेषताएं हम सब ने बहुत पालना ली है। 2 साल तक मुझे याद है दादी जब अव्यक्त हुई 97 में, तो बहुत सारे भाई लोग अपना सर पटक पटक के, क्योंकि छोटे छोटे थे, कोई 20 साल जैसे सहीलो भाई ने बताया, तो सबको वो बहुत एक प्रकार से नहीं प्यार की अनुभूति बहुत, और सब रोने लग गए थे, आंखों में आंसू आ गए,
काफी लोग भावुक भी हुए और
जी 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 रोए भी। तो बहुत अनुभव है, और अगर सुनाने चले तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना ही थोड़ा थोड़ा सुनाते रहेंगे ताकि आप लोग भी और इसके इंटरेस्ट बना रहे। ओम शांति।
चंद्रमणि दादी का तो ऐसा था कि वो मुरली, जैसे बड़ी दादी मुरली सुनाते हैं, दादी का मुरली सुनाने का ही एक अजब था। यू नो उनका जो बैठे हैं उनको पूछना और उनकी यू नो भरी सभा में तारीफ कर देना, तो कई चीजें ऐसे होती है ना कि वो हमेशा, जैसे छोटे बच्चे आते थे हम लोग उस समय सेवा में आते थे, तो दादी अरे वाह ऐसे अमृत वेला में अगर कोई हो गया देखो छोटा सा, और उनका बोलने का जो टोन होता था इतना सुंदर था। आज भी आप उनका क्लास अगर सुनेंगे तो उनकी जो हंसी और जो ज्ञान के पॉइंट होते हैं ना, बाबा जो बोलते हैं गंभीरता और रमणीकता दोनों का स्वरूप वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसी महान आत्मा थी। अनिल भाई जी, आप मनोहर दादी जी के बारे में हमें जरूर बताएं, क्योंकि मनोहर दादी भी बहुत ग्रेट पर्सनालिटी रहे। ज्ञान सरोवर को इतने सालों तक उन्होंने सुचारू रूप से चलाया, इतनी सारी सेवाएं हुई और सारे निवासियों की जो सबको इतना जो प्यार दिया, उसके बारे में आप हमें जरूर सुनाएं।
मनोहर दादी का नाम जैसा है मनोहर, तो गुलजार दादी भी जब दादी बैठी होती थी तो गुलजार दादी कहती थी, आप लोगों को तो खूब मनोहर कहानियां सुनने को मिलती होंगी क्योंकि दादी इतनी रमणीक थी। और कभी ऐसा नहीं हो सकता है उस समय कि मुरली में किसी को झुटका आए, क्योंकि दादी के मुरली में कम से कम 7-8 बार ठहाका तो होता ही था, इतना जोर जोर से लोग हंसेंगे। कुछ ऐसी बातें जैसे दादी का जो सुनाने का लहजा था, ज्ञान सुनाने का, इतना रमणीक ढंग से, जैसे इसीलिए उस समय बाबा के जीवन कहानियां केवल मनोहर दादी ही सुनाती थी। वो ऐसा सुनाती थी ऐसा जैसे सम्मुख हम भी देख रहे हैं। तो दादी मान लो मुरली सुना रही हैं और हमेशा हम लोग सुनते थे, फिर भी दादी मुरली सुनाते सुनाते पूछेंगी, आप लोगों ने मोह जीत की कथा सुनी है, कहानी सुनी है? तो सब लोग सुने होते थे, लेकिन दादी से सुनने के लिए, नहीं दादी हम लोगों ने तो नहीं सुना है तो दादी ऐसा फिर उसको सुनाती थी। अच्छा कभी मान लो बाजोली आ गया, बाजोली सब, अच्छा आप लोगों ने बाजोली खेल देखा है? नहीं दादी हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो फिर मनोहर दादी कहेंगे, आओ रामू आप बाजोली खेल के दिखाओ। तो जैसे मान लो आके रामू भाई इधर खड़े हो गए और कहेंगे अच्छा अभी शुरू करो, अब वो संकोच करते करते एक बार बाजोली करके खड़े। दादी ने कहा ऐसे थोड़े ना, यहां से लेके वहां तक और पूरा क्लास हंसता रहता था उस समय, मतलब मुरली के बीच में ही यह चलता था। अच्छा और मुरली मान लो दादी ने पढ़ लिया सार प्रश्न उत्तर, अब गीत आया ना, तो गीत ऐसा नहीं गीत की लाइन हो गई, दादी किसी को बुलाएगी, कौन एक गीत प्रस्तुत करेगा, किसको आता है, तो कई लोग इंटरेस्टेड रहते थे सुनाने के लिए, तो आएंगे और फिर गीत सुनाएंगे। तो इसीलिए कई बार लोग कहते थे कि दादी अगर और लंबे समय तक रहती तो दादी शायद नृत्य भी प्रस्तुत करवाती यहाँ पर। तो दादी का इतना अच्छा लहजा था, और बड़ी बहनें भी बताती हैं कि जब पांडव भवन में वो लोग किसी गेस्ट को भेजते थे या किसी नए भाई बहन को भेजते थे जो पहली बार आ रहा था, तो सोचते थे हम भेजेंगे और कोई साथ में गाइड तो नहीं है, लेकिन लोगों को फेथ होता था कि वहां मनोहर दादी है, वो कोई भी अगर अकेला भटक रहा है उसको पकड़ लेंगे, आप कहाँ से आए, क्या करते हो, तो कोई भी ऐसा नहीं फील करता था कि अननोन है दादी, कोई भी हो। और दादी का जो मुरली सुनाते समय भी जो एक्शन होता था ना, कभी एक्शन होगा, जैसे मान लो दादी उस समय बताएगी, जैसे कि मान लो किचन में गए, किचन में पकौड़ा बन रहा है और आपकी दिल बीत बीत करने लगी और आपने उठा के खा लिया, तो वो दादी के जो सुनाने का लहजा ऐसा होता था ना, ऐसा एक्शन, पूरा क्लास हंसता रहता था दादी का। तो बहुत ही रमणीक थी दादी, जैसे मान लो कोई सुनाता था दादी वो भाई चले गए, हम किसी भाई कहते अच्छा वो चला गया, वो तो अभी भला चंगा था, लोग कहते थे नहीं दादी वो दिल्ली गए ना, अभी दिल्ली गए। तो दादी के सुनाने का लहजा हर बातों में, कोई इवन शरीर भी छोड़ा है उस समय भी योग के बाद दादी का जो विचार होता था कुछ भी ऐसा प्रस्तुत करेगी, जाए बाबा की भी जीवन कहानी सुनाएगी, तो इतना रमणीक ढंग से कि वैसा रियली गुलजार दादी भी हमेशा ही कहती थी ये तो दादी ही सुना सकती, तो वैसी कहानी वैसे प्रैक्टिकल कुछ। और प्रैक्टिकल में भी दादी जैसे बहनें आती हैं सेवा में, कोई कुमारियां, बहुत सारी कुमारियां आती थी, तो दादी हमेशा उसमें से देखेगी आप क्या करती हो, आप कहाँ रहती हो, उसमें से दादी तैयार कर करके बहुत सारी कुमारियों को, आज उस समय दादी के समय की बहुत सारी कुमारियां सेंटर संभाल ले जाकर, उनके अंदर भी बहुत सारे सेंटर्स हैं, तो दादी उनको सेंटर्स पर भेजेगी, और जब सेंटर्स पर भेजती थी दादी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, और बड़ी बहनों को चाहे जो नहीं चार्ज हो उसको भी बोल के रखती थी कि इस बहन की कोई भी कमी हो तो इसको नहीं बोलना है, मुझे बोलना। तो दादी इतना बहनों के लिए जिगरी प्यार था, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी, तो दादी की पालना तो बहुत ही अद्भुत थी, न केवल ज्ञान सुनने सुनाने में लेकिन प्रैक्टिकली भी। दादी जब हम लोग कभी पिकनिक करेंगे तो दादी साथ बैठेगी, साथ ही खाएगी, तो दादियां तो सभी दादियां एक से एक थी, मनोहर दादी की तो जितनी बातें सुनाए बहुत कम। कई बार तो दादी जैसे मान लो यहां से जाती थी, लास्ट में दादी जैसे पैर का थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम था तो व्हील चेयर पर भी ले जाते थे, तो जैसे मान लो इधर जा रही है किचन के आगे विष्णुपुरी की तरफ, तो वहां आम का पेड़ होता है ना, आम लगे होते थे छोटे छोटे आम जैसे, तो दादी वहां बैठ जाएगी साइड में और दादी कहेगी अच्छा दादी आम खाना चाहती है, और कच्चे कच्चे आम होते थे उस समय, तो फिर कोई जाते थे डिस्पेंसरी वहां सामने होता था, तो वहां से चाकू भी लाए, नमक भी लाए, अब उस समय दादी वहीं आम कटवाएगी और जो भी वहां जा रहे सबको देगी, और वो इतना खट्टा खट्टा आम होता था, हम लोग को तो याद है एक बार दादी दे दिया, हम तो खा ही नहीं पा रहे थे थोड़ा, लेकिन दादी तो इतने आराम से, और मनोहर दादी की आपने कहा, लेकिन मैं साथ ही में एक गुलजार दादी का भी सुना देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल घटना देखा मैं कैसे दादियों का एफर्ट होता था। एक बार एक स्थान था, उस नाम का स्थान मैं नहीं बता रहा हूं, वहां कुछ डकों का प्रॉब्लम था, यहाँ की बात थी वो कहीं और एक स्थान, तो वहां डक में पानी भरा था और 3-4 महीने से डक तो चला नहीं था, तो अचानक को क्लास रखा गया वहां गुलजार दादी का, और ठंडा करने के लिए उसको चला दिया गया, तो इतना स्मेल फैल गई वहां हाल में, इतना स्मेल कि सब लोग लेके आए कुछ फ्रेग्रेंस टाइप का, कुछ रूम फ्रेशनर, क्या क्या सब छिड़क रहे सब कुछ। लास्ट में उससे भी कंट्रोल नहीं हुआ और हम भी देख रहे थे, हम आगे ही बैठे थे थोड़ा, तो हम देख रहे थे कि कोई नाक अपना बंद कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, जितना पूरा क्लास है हर एक कुछ न कुछ कर रहा है, इतना परेशान। और मैं वही देख रहा, मेरा ध्यान केवल गुलजार दादी के ऊपर था, मैं दादी को देख रहा था दादी क्या कर रही। तो मैंने देखा एक सीनियर बहन आई है ना उसकी, अच्छा अभी क्लास यहां नहीं होगा, क्लास शिफ्ट कर रहे हैं वहां पर होगा, कोई जगह बताया। तो गुलजार दादी ने कहा क्यों क्यों दूसरे जगह, यहीं करेंगे ना क्लास। तो दादी ने कहा कि ये स्मेल क्या बड़ी चीज है, अंत में तो आप लोगों को लाशों के बीच बीच से गुजरना होगा, बीच से निकलना होगा। तो मैंने कहा देखो दादियों का हर समय कितना एफर्ट, कितना। तो बहुत ही दादी आपने व्यवहार से, अपने एक्टिविटी से, प्रैक्टिकल में बहुत कुछ सिखा देती थी।
बहुत सुंदर। मनोहर दादी का तो ऐसा था कि वो इतनी घरेलू थे, अगर दादी लंच कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं आप पहुंच गए ना, तो अपनी थाली में से, जैसे आम की बात आई ना, तो एक बार ऐसे ही था, मैं कुछ दादी को देने गया था और दादी कॉटेज में ही डिनर कर रहे थे, तो आम के पीस कटे हुए थे। अच्छा लेके आए हो, लो आम खाओ। नो, कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब जैसे होते हैं ना कि आप, वो आपको अपना बच्चा समझते हैं, बहुत ही ऐसे उस तरीके से। और दादी तो ऐसी थी कि वो हर चीज का मजा लेते थे, ज्ञान का भी मजा लेते थे और हमारा भी मजा लेते थे उस तरीके से। और दादी की एक और विशेषता थी कि वो जैसे रोटी डिपार्टमेंट में जाते थे, मक्खन मानी वगैरह, यू नो, उन ये दादियों को, हर एक दादी को ये चीज आती है, प्यार कैसे देना है, अपना कैसे बनाना है। तो कुछ शब्द हम रोहित भाई से भी सुनेंगे, लाइक रोटी डिपार्टमेंट में आके दादी कैसे आप लोगों को पालना देते थे।
मनोहर दादी जी की अपनी बहुत सारी खूबियां विशेषताएं थी। दादी जी जब तक स्वस्थ रही हम सबकी बहुत पालना की, और आप सबको याद रहे 97 से लेकर के 2008 तक ज्ञान सरोवर का बहुत सफल संचालन किया। तो जब भी दादी फ्री होती थी तो किचन में जरूर आती थी, बड़े भंडारे में, दूध डिपार्टमेंट तरफ, टोली में, रोटी में। और रोटी डिपार्टमेंट में आने के बाद फिर माताओं से हाय हेलो करना, सबको पूछना कहाँ से हैं, सबकी तबीयत पानी कैसी है। और दादी कई बार जहां पर हम लोग रोटी सेकते हैं ना सिगड़ी, वहां पर कई बार खड़े होकर के देखती थी एक साथ। आप लोगों में से कई लोग रोटी डिपार्टमेंट नहीं देखे होंगे, यहाँ तो हाथ से ही बनता है रोटी, तो एक बार में 10 रोटी डालते हैं सिगड़ी में तवा से, तो कभी कभी एक आध रोटी नहीं फूलती थी। तो दादी बोलती थी देखो 9 रोटी फूला, एक नहीं फूला। और जब कभी 10 और 10 के 10 फूल जाते थे तो दादी वही खड़े होकर ताली बजाती थी, 10 के 10 रोटी फूल गए। इतना उमंग उत्साह सबको दिलाया करती थी। और जैसे सैलू भाई ने बताया मक्खन मानी, तो उन दिनों महीना दिन 2 महीने में एक बार दादी अपने हाथ से मक्खन मानी, आप लोगों में से सबको पता, किसको किसको पता है मक्खन मानी क्या होता है? अच्छा अच्छा, छोटी छोटी रोटी होती है। अब यहाँ तो मैं प्रोग्राम नहीं बना सकता,
भोग में छोटी रोटी बनाते हैं ना,
हाँ ऐसे छोटी रोटी होती है और उसी समय तुरंत छोटा छोटा बना करके गरम गरम वहाँ रोटी से तवा से निकाल करके सिगड़ी से निकाल कर उसमें चीनी का भूरा और फ्रेश मक्खन। वो दादी वहां कुर्सी में बैठती थी और एक एक भाई बहन सब आते थे और एक एक के मुख में डालना है, उसमें हाथ भी नहीं देना है। दादी के सामने बैठ करके दादी से दृष्टि लेकर के वो मुंह आ करके फिर दादी अपने हाथ से रोटी, गरम रोटी मुंह में खिलाती थी। तो इसको कहते मक्खन मानी है ना, मानी मतलब सिंधी में रोटी और उसमें मक्खन डाल करके खिलाना। तो ऐसी दादी को खिलाने पिलाने का बहुत बहुत प्यार सबको रहता था। छोटी बहने या बड़ी बहने या टीचर बहने आई तो दादी कहती थी कई बार, दादी कॉटेज में आना मैं कुछ खिलाऊंगी। फिर एक बार की बात है, ऐसी कुछ प्रोग्राम चल रहा था तो 10-12 बहने मिल गई दादी को। दादी ने कहा कि सब आना दादी कॉटेज। अब 9 बजे करीब गई सब बहने। दादी ने कहा आइसक्रीम खाओगे? तो बहनों ने कहा भाई हाँ आइसक्रीम खाएंगे दादी। उस समय दादी के साथ भाग दीदी होती थी, भाग बहन उनकी ब्राह्मणी। तो भाग दीदी उस समय गई थी किचन तरफ कुछ काम से, तो दादी थी। दादी ने कहा फ्रिज में से निकालवाया आइसक्रीम। अब आइसक्रीम निकालवाया तो जमा हुआ था आइसक्रीम, तो उसको छोटा छोटा काट करके सब बहनों को दिया। अब खाए तो थोड़ा फीका लगे, तो सबको लगा कि हो सकता है शायद दादी जो है बिना चीनी के खाती है शुगर के कारण से, तो वही रखी होगी। अब आधा खाए और आधा मुंह बनाए दीदी लोग, क्यों टेस्ट नहीं आ रहा था उनको अच्छे से। इतने में जब आधा खा चुके थे तब भाग दीदी आ गई। भाग दीदी ने कहा क्या खिला रहे हो दादी? बोले मैं तो इन लोगों को आइसक्रीम खिला रहे हूँ। तो भागवल ने कहा कि आइसक्रीम कहाँ है? बोले ये फ्रिज में तो था ना। बोले नहीं दादी वो फ्रिज में आइसक्रीम ही था, वो तो डोसा का आटा था। तो दादी को ऐसा खिलाने पिलाने का होता था, वो डोसा का आटा रखा था जमा हुआ था उसको भी खिला दिया। तो ऐसे दादी को है ना बहुत मतलब प्यार था खिलाने पिलाने का। और जो भी कुमारियां आती थी क्लास में दिखता था, सबको दादी कहती थी कि तुमको ब्रह्मा कुमारी बनना है, तुमको सेंटर जाना है। तो ऐसे अनेक कुमारियां हैं भारत के अनेक स्थानों पर, जहां जैसे अनिल भाई सुना रहे थे कि छोटी छोटी कन्याओं को देखते ही सेवा में आते थे, उनको देखते ही कहते थे तुम मिलने आना दादी कॉटेज। तो कई स्टेट की बहनों को कुमारियों को दादी ने अनेक सेवा केंद्रों पर सेवा के लिए भेजा। तो एक प्रकार से कुमारियों को विशेष टीचर रही अपने अपने समय। और जैसे अनिल भाई ने बताया कि दादी विशेष जो है बाबा की जीवन कहानी को जीवंत रूप से सुनाती थी, और जितने बार भी सुनो ऐसा लगता था जैसे सुनते रहो। तो बहुत कम समय में मुरली इतना रोचक तरीके से सुनाती थी दादी, और मतलब ऐसा लगता था जैसे बस मनोहर कहानी जैसे। तो अनेक विशेषताओं की धनी थी, और आज भी हम लोग दादियों को मिस तो करते हैं। ओम शांति।
अनिल भाई आप हमें डॉक्टर निर्मला दीदी के बारे में भी बताओ। दीदी भी निर्मला दीदी ने आप सबको बताओ, वो भी ज्ञान सरोवर के डायरेक्टर रहे और उन्होंने भी बहुत सुचारू रूप से यहाँ की सेवाओं को देखा। और आपको पता हो दीदी उन मुख्य 5 भाई बहनों में थे जिन्होंने यज्ञ की सेवाओं को बाहर लेके गए विदेश में। उनकी बहुत सारी विशेषताएं थी। तो आपका तो अनिल भाई 1-to-1 दीदी के साथ था, रोज आप दीदी से मिलना होता था। तो कुछ ऐसी जो विशेषताएं आपको लगी कि दीदी को वो विशेष बनाती है, आप प्लीज वो अनुभव हमारे साथ शेयर करें।
पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों में बहुत नए भाई बहने हैं जो सोचते होंगे हम तो दादी से नहीं मिले, हम दादी के पालना नहीं लिए, हम बहुत लेट से आए, बहुत देर से आए। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि कोई बच्चा अगर बहुत लेट से भी आया ना, मान लो आप संगम युग पर केवल 5 साल ही ज्ञान में रहते हैं, 5 साल ही अपना जीवन सफल करते हैं, तो बाबा ने कहा उस 5 साल में ही बाबा 100 साल के जो पालना है ना बाबा उसी में दे देता है। तो बाबा किसी का मिस नहीं करता है, जिसको नहीं भी मिलता है वो सभी को बाबा दे रहा है पालना, आपको भी वो पालना मिल रही है। फिर भी अगर प्रैक्टिकल में आपको फील करना है दादियों के भी पालना, तो बहुत सारी बुक्स हैं, ज्ञान सुमन है, ज्ञान सरिता है, जिसमें दादियों के बारे में आप प्रैक्टिकल उसमें देख सकते हैं कि कैसे दादियों का क्या फीलिंग है, क्या हम सबके लिए दादियों की भावना होती। तो ये सब बुक भी पढ़नी चाहिए दादियों की भी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो बाबा आपको भी दादियों की भी जो पालना है वो बाबा दे रहे हैं, कुछ मिस नहीं है, बस हमें थोड़ा सोल कॉन्शियस रहना है, बाबा को याद करना अच्छी तरह से। तो जैसा कि सैलू भाई ने बताया कि डॉक्टर निर्मला दीदी जी, दीदी इतनी सच्ची थी, इतनी सच्चाई थी दीदी में कि स्वयं भगवान दीदी को क्या कहते मालूम है? निर्मल आश्रम, अभिवाणी में निर्मल आश्रम कहते थे बाबा। और साकार में बाबा कहते थे कि अगर ऐसी 30 कन्याएं मिल जाएं बाबा को, केवल 30 कन्याएं, तो बाबा एक साल में स्वर्ग ला दे। तो जब हम ऐसे ही एक बार पर्चा दे रहे थे, दीदी बैठी थी, तो दीदी ने कहा एक साल नहीं चुटकी में, ऐसे बाबा ने कहा था। तो इतनी सच्चाई थी दीदी की। दीदी जैसे एक बार कह रही थी, दीदी को शायद बॉम्बे में या कहीं और बुलाया था भट्टी कराने के लिए। तो दीदी ने कहा कि भट्टी के लिए बुलाया, पहले सुदेश दीदी को बुलाया था, तो उन्होंने शायद, उनके पास समय नहीं था, फिर उन्होंने वेदांति दीदी को बोला, फिर उनके पास समय नहीं था, फिर मुझे बुलाया। तो दीदी इतनी सच्चाई से हर बात को प्रस्तुत करती थी, और हमको तो हमेशा मिलना पड़ता था शाम को दीदी के साथ। तो कई बार देखा मैं कि दीदी कई बार सीरियस जैसी होती थी, हमको लगता था अभी जाए, अभी जैसे थोड़ा पहले हम गए हैं और दीदी हमको डांट रही होती थी, मैंने तो उनको मना किया था और आपने कैसे छुट्टी दे दिया उनको। तो मैंने कहा दीदी अभी तो दे दिया छुट्टी, वो तो आएंगे। तो भी दीदी इसके बाद नॉर्मल, दूसरा कोई हो तो बहुत एक्शन लेगा, लेकिन दीदी उसको एकदम एक्सेप्ट कर लेती थी। फिर एक आध घंटे बाद ऐसा होता था कि अचानक फिर जाना पड़ता था, फिर हम डरते हुए जाते थे, अभी तो दीदी हमको डांटी है, पता नहीं अभी दीदी कैसे तो कैसे मिले दीदी, ऐसे बड़ा संकोच में जाते थे धीरे धीरे। लेकिन जैसे खासियत देखा दीदी, जैसे वो भूल गए कि एक घंटा पहले आधा घंटे क्या, उसके बाद ऐसा व्यवहार में आए कि ऐसा प्रस्तुत जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इतनी, और छोटों को मैं देखा, छोटों के लिए दादी दीदी जो है इतनी मददगार थी गुप्त रीति से। जैसे मान लो कोई छोटा भाई या कोई, मान लो कोई छोटा भाई है और मान लो उसका, उसके इंचार्ज से बात करना है, या कोई छोटा भाई है उसके जोन इंचार्ज है, या उसके टीचर से बात करना है, तो दीदी कहेगी अपना नहीं तो मैं बात करती हूँ। अच्छा, कई बार हमको भी किसी से बात करना होता था तो दीदी कहती थी कि अब बता दो। ठीक है दीदी, मैं बता दूंगा। तो दीदी शब्दों से समझती थी, तो क्यों कोई बात है, नहीं दीदी सुना देंगे, हम बता देंगे। तो दीदी समझ जाती थी कि अच्छा अच्छा लाओ मैं ही फोन करती हूँ। तो दीदी कभी भी छोटों को बचाने के लिए खुद फ्रंट में आएगी, फ्रंट सामने। और दीदी कभी ये नहीं सोचती थी कि जैसे आजकल है, हम देखते हैं कि इनसे को कहेंगे तो नाराज न हो जाए, इनसे संबंध खराब न हो जाए, बहुत कुछ सोच समझ के हमको बात करना पड़ता। दीदी इन सब बातों को नहीं देखती थी, कोई भी बात बिल्कुल क्लियर। उससे भले दीदी से उनके पास वाले दूर हो जाए, 50 लोग नाराज हो जाए, लेकिन दीदी को जो एक्शन लेना होता था बिल्कुल क्लियर। तो दीदी को देखा हमेशा कमजोरों को साथ देता हुआ। एक बहन आती थी, सेवाधारी बहन थी, वो उससे पूरे ज्ञान सरोवर में सभी लोग लगभग परेशान हो गए थे। वो आती थी तो आते ही सब लोग बोलते तो आ गई क्या, और हमको कितना फोन आता था, वो कैसे आ गई। तो मैं भी उसको एक आध बार बोला, मैंने कहा कि आप 10 दिन के बाद आप चले जाना बिल्कुल। फिर देखते थे हम 11-12 दिन बाद, देख रहे हैं तो अभी इधर ही है, कहीं घूम रही है। फिर हम बोलते थे आप अभी यहाँ कैसे हो, गई नहीं अभी, आप हमसे नहीं बात करना, दीदी से बात करना। तो इतना हरे का रुतबा होता था दीदी से बात करके, दीदी के बल पर कुछ भी। तो देखा इतना दीदी से सपोर्ट हरेक को मिलता था, ये नहीं कि ये सेवादारी है चाहिए ये है। दीदी देखा जो कमजोर होते थे उनके लिए बड़ों से भी टकरा जाती थी और पूरा मदद करती थी। आज जितने भी नए भाई बहन है इतना मिस करते हैं दीदी को, यहां नहीं इवन शांति वन में भी हो, कोई पांडव वन में भी हो, अगर कोई अकेला पड़ गया है, उसको लगता था कि उनको ये सच्ची बात है, इसमें और कोई सपोर्ट हमको नहीं करेगा, वहां से भी लोग दीदी के पास आ जाते थे, दीदी ऐसी बात है, तो दीदी अकेले उसके साथ खड़ी हो जाती थी भले कोई कुछ भी कहे। तो हम देखते थे कि कितनी दीदी जो है सत्यता की और पवित्रता की मूर्ति थी, क्यों बाबा उनको निर्मल आश्रम कहते हैं। एक बार हम ऐसे पर्चा दे रहे थे तो दीदी को हमने कहा कि दीदी जो है हर जगह जो है शीतलता की शक्ति से विजयी रही है। तो तो दीदी ने कहा नहीं ये नहीं केवल, हालांकि मुरली के पॉइंट थे, तो दीदी को मैं देखा क्या पसंद है, तो दीदी ने कहा कि नहीं बाबा ने कहा था, और ये बाबा ने कहा उनको कि दीदी हमेशा विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा रही, हमेशा सच्चाई से, हमेशा पवित्रता से। तो ये देखा दादी दीदी की, और दीदी इतनी रमणी, कितना जैसे सीरियस, हम लोग सोचते हैं ना बहुत सीरियस होंगे ऐसे देखने से सीरियस, लेकिन बहुत बहनों का अनुभव हुआ, बहुत बहनें भट्टियों में आती थी, यहाँ जब भट्टियां हुई ज्ञान स्वर में, तो बहुत सारी बहनें यही कहती थी कि हम दीदी से दूर थे तो हमको लगता था दीदी तो बहुत सीरियस है, और दीदी तो इतनी रमणीक है, इतना तो बाद में लोगों को जब एकदम दीदी के पास आए ना, तो लोगों को इसकी फील किए, ये अनुभव हुआ कि दीदी कितनी रमणीक है, कितनी सच्चाई थी उनकी। अभी एक पल आपको डांट रही है, एक पल आपका एक्शन ले रही है, अब दूसरे ही पल जाओ वो दीदी भूल जाएगी कि आप वही है। दीदी को आप जो, और दीदी को जो कार्य करना है, जो एक्शन लेना है, आपके प्रति एकदम नॉर्मल जैसा एक्शन लेंगे। तो मैंने देखा कि क्यों बाबा इतना इनको याद करते थे, निर्मला दीदी को।
रिद्वे, आपका दीदी के साथ कैसा अनुभव था?
ओम शांति। दीदी के साथ बहुत प्यार से उठना बैठना होता था मेरा भी। जब भी गुरुवार आता था तो एक दिन पहले, कई लोग भोग के लिए पैसा देते हैं तो भोग का पैसा लेकर के जाता था, और मुझे याद है कोरोना काल में ब्राह्मणों के साथ भी इस तरह की परीक्षाएं कोरोना संबंधित आता था, तो कई लोग भोग लगवाते थे तो दादी उनको वॉइस मैसेज करती थी, या दादी कहती थी मेरे से बात कर, दीदी कहती थी बात करा दो। तो बहुत विशेषताएं थी दीदी के अंदर, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि कोरोना काल में जब कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा था तो दीदी से मैंने बहुत सारा उनका व्यक्तिगत इंटरव्यू लिया था, उनकी जीवन कहानी के ऊपर, उनकी व्यक्तिगत बातों को भी मैंने बहुत सारा पूछा था। कि आप सबको याद होगा कि दादी, दीदी पहली दीदी है जो विदेश में अकेली बहुत साल तक सेवा किया, बाद में जयंती दीदी, जानकी दादी सब बाद में गई, लेकिन बड़ी दीदी जो निर्मला दीदी थी वो विदेश में अकेली बहुत साल तक सेवा करती रही। तो मैंने दीदी से पूछा था कि दीदी आप अकेली, आपके साथ कोई ब्राह्मणी नहीं, उस समय इतनी सेवा नहीं, विदेश जैसी जगह पर, आपको कभी संकल्प नहीं आया कि मैं आखिर कब तक अकेली सेवा करूंगी, अकेली खाना बनाना, अकेली कपड़ा धुलाई करना, अकेली झाड़ू पोछा करना, अकेले कोर्स कराना, आखिर ये सब कैसे कर पाती थी, आपको ऐसा कभी विचार नहीं आया कि मैं वापस भारत में चली जाऊं? तो दीदी ने एक बार कहा था कि मेरे को एक बार आया था, तो बड़ी दादी को, दादी प्रकाश मणि जी को उसने पत्र लिखा था कि दादी आखिर मैं अकेली, ये विदेश में लोग निकलते भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं निकलते हैं, अकेली अकेली रहना पड़ता है। तो बड़ी दादी ने उनको पत्र का जवाब दिया था कि शेरनी जंगल में अकेली रहती है, हाथी झुंड में रहता है। तब दादी को वो एनर्जी आ गया कि मैं शेरनी हूं। तो बड़ी दादी ने दीदी को ये शेरनी की उपाधि दी थी, और उसके बाद दीदी को कभी ये संकल्प नहीं आया कि मैं विदेश में अकेली सेवा करती हूं। इसके अलावा जैसे अनिल भाई सुना रहे थे, बहुत बैलेंस था दीदी के अंदर, कई चीजों का बहुत, जो बोलना है स्पष्ट बोलना है। तो एक बार मैंने दीदी से पूछा था कि दीदी आप सबको याद होगा जो धर्मराजपुरी में ज्यूरी बनेगा उसमें दीदी का नाम है, तो मैंने दीदी से पूछा था दीदी हम सब निवासी लोग समर्पित लोग हैं, हम लोग का इतना प्यार है आपसे और आपका भी हम सबसे प्यार है, तो जब कभी थोड़ा हमारे पक्ष ले लेना दीदी ऊपर। दीदी का तिथि नहीं, वहां धर्मराजपुरी में किसी का पक्ष नहीं लिया जाता। तो बहुत दीदी जो है बहुत स्पष्टवादी थी और हर चीज की बहुत पालना प्यार। और मैंने दीदी से पूछा था कि दीदी आप तो अष्टतन की आत्मा हो, तो दीदी ने कहा था कि अष्टतन तो नहीं लेकिन टॉप 25 में जरूर आऊंगी मैं, ऐसा दीदी को बहुत अपने ऊपर निश्चय था, नशा था, और बाबा का नाम रोशन करने का बहुत उनको अंदर से। और एक दीदी के अंदर बहुत और सुंदर विशेषता थी, वो किसी से प्रभावित नहीं होती थी। मैंने बहुत बार पूछा कि दीदी जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत लोग रोए, आपको रोना आया कि नहीं आया? तो उसने कहा नहीं नहीं मुझे कोई रोना वोना नहीं आया, मैं किसी से प्रभावित नहीं होती थी, ब्रह्मा बाबा से भी प्रभावित नहीं हुई, मेरे तो शिव बाबा से बहुत प्यार शुरू से। तो ऐसी न्यारी प्यारी थी दीदी, बहुत न्यारी प्यारी। दादियों के साथ भी बैठना उठना भले दीदी का होता था, लेकिन एक बाबा से बहुत प्यार और दिनचर्या में एक्यूरेट। अमृत बेला बिल्कुल एक्यूरेट थी दीदी, मुरली में एक्यूरेट। हम भाई बहने भले लेट हो जाते थे, याद होगा अनिल भाई को कि दीदी 15 मिनट पहले आ जाती थी मुरली सुनाने के लिए। ऐसी योग में भी एकदम एक्यूरेट। तो दीदी चूंकि अभी अभी कुछ समय पहले ही अव्यक्त हुई है, तो दीदी की बहुत सारी बातें हम सबको याद रहती है और दीदी की कमी भी हम सबको बहुत खलती है और दीदी की प्यार पालना से हम सब जो है बहुत मजबूत हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। 2008 से लेकर के दीदी यहाँ ज्ञान सरोवर का संचालन किया और शुरू शुरू में तो 1-2 साल थोड़ा समझने में लगी दीदी को, और उसके बाद जब पूरी तरह समझ गई तो बहुत यहाँ का सफल संचालन किया। भाई बहनों को बहुत प्यार और बहुत जैसे स्ट्रिक्ट थी कई चीजों में। मैं दीदी को बोलता था दीदी आप थोड़ा स्ट्रिक्ट ज्यादा मत रहा करो, आप लोग आपसे डरते हैं। लेकिन जैसे अनिल भाई ने बताया, जो मिलते थे उनके सामने जा करके वो बिल्कुल जैसे प्यार में पिघल जाते थे। तो दीदी कई बार देखने में ऐसा लगता था, लेकिन दीदी के अंदर बहुत प्यूरिटी थी। और आप सबको मालूम होना चाहिए ब्रह्मा बाबा के समय यज्ञ में पहला मकान, ये सब कम लोगों को पता रहता है, पहला मकान दीदी के पिताजी ने बाबा को बना के दिया था यज्ञ में। तो मधुबन के अलावा अगर कहीं भारत में कहीं भी सेंटर बना और पहला मकान बना, क्योंकि दीदी 8 भाई बहने थे और बाकी सब जो है सब ज्ञान में नहीं थे, तो दीदी के लौकिक पिताजी दीदी की शादी करना चाहते थे। तो दीदी ने अपने पिताजी को कन्विंस किया कि जो आप शादी में खर्चा करना चाहते हो उस पैसे से मकान बना दो। तो उस पैसे से दीदी ने और डबल लगवा करके मकान बनाया। उससे बाबा एक बार गए और वहां से फिर सेवा आज तक विकांदीवली में बॉम्बे में। तो वहां एक मकान बाबा का दीदी के पिताजी ने अपने पिताजी को कन्विंस करके बनाया। तो सचमुच वो बहुत सारी प्रतिभा की धनी थी और दीदी का प्यार पालना का क्या कहें, सचमुच वो जो प्यार पालना मिला है वो बहुत मजबूत हम सबको बनाता है। ओम शांति।
जैसे रोहित भाई और अनिल भाई बता रहे थे ना, दीदी जो चीज सही है वो सही है, उसमें कोई बट एंड नट्स नहीं होता था। कोविड के समय पे दीदी हर हफ्ते विदेशियों को क्लास देती थी, तो उस समय पे हमें थोड़ा जाना पड़ता था उनको सारा लैपटॉप वगैरह तैयार करके। तो कई बार मैंने देखा जैसे माताओं का क्लास होता है या बहनों का, स्पेशली कुमारियों का होता है, तो दीदी का क्लास जो होता था ना, जो चीज बोलनी है ना वो एकदम बोलनी है। ऐसा कईयों को लगेगा कि ये चीज ये धारणा कैसे करें, उनका क्लियर होता था कि बाबा ने बोला है तो ये करना है। तो ऐसी चीजें बहुत दीदी क्लियर, ईमानदार और एक्यूरेट। जैसे बोला लास्ट के समय पे तो दीदी 15 मिनट पहले योग कराने यहाँ पे आ जाती थी, पंचुअल इतनी थी दीदी। इवन निवासियों की जो मीटिंग होती थी, मेरे को नहीं लगता कि दीदी कभी एक बार भी लेट आए हों, बल्कि दीदी पहले आ जाती थी ऐसा। और उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना बेहतर, अगर दीदी ने आपका फोन नहीं उठाया तो वो आपको कॉल बैक करेंगे, ये इतनी विशेषता थी। और मेरे को याद है कि जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो उस समय पे मैं अहमदाबाद में था हॉस्पिटल में, और जैसे देखते हुए भी कई बार जैसे बाबा बोलते हैं ना, योगी जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है, उनके चेहरे पे परम शांति होती है, सेम यही सीन था। दीदी का सुबह से थोड़ा वो था, लेकिन जब शरीर छोड़ने वाले थे, डॉक्टर्स ने सारा चीज निकाल दिया था, तो दीदी ने अपनी आंखें खोली और उस कमरे में जो जैसे हम 10-15 भाई बहन जो थे उनको दृष्टि दिया और एकदम साइलेंटली आंखें बंद कर ली। तो बाबा जो बोलता है कि जो योगी होते हैं उनको बाबा भी कैसे लेके जाता है, तो ये प्रैक्टिकली दीदी का देखा, बहुत महान आत्मा। और अभी हमारे बीच में सुदेश दीदी हैं, तो सुदेश दीदी के बारे में एक चीज जरूर बताऊंगा कि आप उनका क्लास सुने होंगे, मिले होंगे कल, लेकिन प्रैक्टिकल इतने होते हैं। हम 2018 में जब दीदी यूरोप में थी, जर्मनी में फ्रैंकफर्ट वहां पे कोऑर्डिनेटर सेंटर है जहां से सारे जर्मनी की सेवाएं होती हैं, दीदी वहीं रहते हैं, तो मैं अशोक भाई जी के साथ था और हम लोग रात के 12:30 बजे पहुंचे थे सेंटर पे। दीदी उस समय
जाग रही थी और आप बिलीव करोगे दीदी किचन में उस समय रोटी बना रही थी हमारे लिए। बोले क्योंकि विदेश में तो जनरली जैसे इंडियन सेंटर होते हैं वैसा नहीं होता है ना, वहां पे भाई बहने इतने नहीं होते हैं। तो इस एज में दीदी की आज समझो आज से 5 साल पहले भी एज होगी तो 80 ईयर्स तो होगी 80। हाँ तो उस समय पे भी दीदी रात के मैंने दीदी को मतलब कर्टी जैसे होता है दीदी मैं रोटी बनाने जानता हूँ मैं बना लूंगा ऐसे बोला, लेकिन दीदी ने नहीं नहीं भाई ऐसा क्यों। तो यज्ञ में ऐसी ऐसी महान आत्माएं हैं जो ज्ञान युग तो है ही है लेकिन जीवन में उनकी बहुत बहुत ऐसी धारणा है जो उन जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है राइट। तो आज ये जो सेशन रखा है इंटरव्यू इसमें केवल कहानी सुनाने का मकसद नहीं होता है, इसका मकसद यही होता है कि बाबा के जो हम सब बच्चे बहुत विशेष हैं हर कोई आप देखेंगे ना ज्ञान मार्ग में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना गुण शक्तियां विशेषताएं अपने आप आने लगती हैं, आप दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। मैं एक छोटा सा अनुरोध सुनाऊंगा, जब मैं मधुबन में आया तो उस समय पे जगदीश भाई जी थे, आप जानते हैं जगदीश भाई यज्ञ के कितने बड़े वरिष्ठ भाई रहे हैं और सारा लिटरेचर कमेटी जितनी सारी सेवाएं होती हैं उन्होंने उसका सारी प्लानिंग किया हुआ है, बाबा उनको गणेश बोलते हैं दधीची बोलते हैं। तो उनका यज्ञ में भी बहुत रिस्पेक्ट दादियों से लेके। तो एक बार मैं टेलीफोन एक्सचेंज में बैठा हुआ था और सुबह उन्होंने फोन किया था अराउंड 5 बजे क्योंकि उस समय पे ये कॉल रेट वगैरह डाउन रहता था 1/4 रेट होता था। तो सारे दादियां और सब यज्ञ में उस समय पे सब कोई बचत की सोचता था, एक कॉल भी होता था ना तो सोचते थे कि जब कम पैसा लगता है तो उस समय पे कॉल करें। तो भाई साहब ने कॉल किया और उन्होंने एड्रेस किया कि मैं जगदीश भाई बोल रहा हूँ क्या आप मेरे को फोन लगा के दे सकते हैं, उन्होंने सेंटर का नाम बताया। तो आप बिलीव करो कि कोई एक इतना वरिष्ठ भाई वो एक छोटे से हम तो सेवाधारी हैं उनको आप इतना रिस्पेक्टफुली सम्मान देते हुए वो एड्रेस कर रहे हैं। तो हम तो इतने छोटे हमारे मुंह से तो आवाज नहीं निकले मैं क्या बोलूं ये स्थिति। मैंने बोला भाई साहब मैं सेवाधारी हूं आप जहां बोलेंगे ना आप मैं वहां लगा दूंगा क्योंकि PBX था और प्लीज आप ऐसे मत बोलिए मेरे मुंह से ऐसे निकला। तो भाई साहब ने बहुत देखो कई बार बोलते हैं कि आप महान आत्माओं से एक बार मिलते हैं ना उनकी छाप आपकी जिंदगी में पूरी जिंदगी भर रहती है। तो वो था भाई साहब ने बोला कि नहीं आप एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पे आपको मीठा बोलना है जहां पे आपको सम्मान देना है तो ये गुण आप धारण करना। ये बात को बीते हुए कितने साल हो गए लेकिन ये बात आज भी मेरे दिल में हमेशा रहती है कि भाई साहब ने एक वैसे तो मुलाकात होती है लेकिन कैसे बातों बातों में आपको जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण जैसे बोलते ना सार सिखा के चले जाते हैं। तो सच में यज्ञ में ऐसे ऐसे हाँ बस टाइम हो गया है 1 मिनट के लिए अनिल भाई। हाँ समय
मैं 1 मिनट में कोर्स एक मिनट एक चंदमणी दादी की यहीं की बात हम सुना देते हैं। दादी यहाँ मुरली सुना रही थी और दादी को चंदमणी दादी को इतना मुरली से प्यार था कि एक बड़ी बहन आई और उन्होंने कहा अभी रोटी नहीं बनी है पूरी तरह से और कुछ और भी बनाना इसीलिए इतनी माताएं उठ जाओ और जाओ अभी। दीदी ने कहा बिल्कुल नहीं मुरली के बीच से कोई माता नहीं उठ सकती भले लेट हो मुरली सुन करके फिर जाना है। तो दादी का इतना मुरली के लिए रिस्पेक्ट था कि मुरली छोड़ के कोई न उठे। दूसरा सुदेश दीदी का एक लाइन में बता दें कि दीदी का कितना लहजा जो केवल ज्ञान सुनाती नहीं लेकिन इनके एक एक शब्दों में ज्ञान होता है। मैं देखा एक दिन हम रेस्ट कर रहे थे तो दीदी का फोन आया तो दीदी ने सीधा क्या बोला ओम शांति मैंने अपने प्यारे भाई को परम धाम से उतार दिया ऐसे करके दीदी। तो इतना बोलने का लहजा हर बातों में इतना बाबा बाबा और जो लहजा हमने कहा कि देखो ये सब हम लोगों को सीखना चाहिए बड़ों से।
थैंक यू आप सब लोगों ने बहुत थैंक यू।